पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से शादी करने से इनकार करती है, लेकिन रुद्र उसे जबरदस्ती शादी के लिए मंडप में ले जाता है। इस अध्याय में रुद्र रूही को मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। रूही रुद्र से शादी का विरोध करती है। दिशा रूही को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उसे जाने नहीं देता। रुद्र रूही को गोद में उठाकर मंडप से चला जाता है। दिशा को घर जाने के लिए कहता है। चैप्टर 61। अब आगे। साली साहिबा, मेरा बॉडीगार्ड्स आपको घर छोड़ देगा। आप घर जाइए और आराम से सो जाइए, और मेरी रूह की बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, क्योंकि रूह का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। इतना बोल भी रूही को लेकर सिंघानिया विला के अंदर चला जाता है, जिसे देख दिशा गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच लेती है और अपने आंखों में आंसू लिए रूही की तरफ देखने लगती है। रुद्र को रूही को ले जाने के बाद घर वाले भी उदास मन के साथ एक एक कर वहां से सिंघानिया विला के अंदर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब वहां पर सिर्फ देवांश और दिशा ही बचे हुए थे। वहीं दिशा वहीं अपने घुटने के बल बैठ जोर जोर से रोने लगती है और धीमी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी रूही, आई एम रियली सॉरी, मैं तुझे नहीं बचा पाई। अब मैं उन लोगों से क्या कहूंगी, क्या जवाब दूंगी? मैंने हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करने का उनसे वादा किया था, लेकिन आज मैं तुझे इस आदमी से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आई एम सॉरी रूही, हो सके तो अपनी दी को माफ कर देना। दिशा जिन लोगों के बारे में बात कर रही है, उन लोगों के बारे में आप लोगों को बाद में मालूम चलेगा, क्योंकि रूही और दिशा के लाइफ के भी बहुत सीक्रेट हैं जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताने वाली। इतना बोल वे रोने लगती है। तभी वहां देवांश आ जाता है और वे भी घुटनों के बल दिशा के सामने बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मिस दिशा, आप ठीक तो है ना? दिशा जो आज खुद को टूटा हुआ सा महसूस कर रही थी और उसे किसी के सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी, किसी की आवाज़ सुनते ही वे बिना ये ध्यान दिए कि उसके सामने कौन है, वे उसे तेजी से गले लगा रोने लगती है। वहीं दिशा की इस तरह अचानक गले लगाने से देवांश के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब दिशा खुद से उसे इतना टाइटली गले लगा उसके करीब आई थी। जिसे महसूस कर देवांश भी दिशा को मजबूती से अपने बाहों में भर उसके बालों पर हाथ फेर बिना कुछ बोले उसे शांत कराने लगता है और अपनी आंखें बंद कर दिशा को महसूस करने लगता है। कुछ देर यूं ही दिशा को महसूस कर अपनी आंखें खोल दिशा के बालों को अपने हाथों में ले उसके बालों को महक उन्हें किस करता है, फिर अपना चेहरा दिशा की गर्दन में छिपा उसके शरीर से आ रही भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगता है। वहीं दिशा जो अब तक कुछ हद तक शांत हो चुकी थी, जब उसे महसूस होता है कि उसने किसी को गले लगाया हुआ है तो वे होश में आती है और तुरंत देवांश को हल्का धक्का दे उसे खुद से दूर करती है। वहीं देवांश जो पूरी तरीके से दिशा में खोया हुआ था, दिशा के इस तरह धक्का देने से वे तुरंत उसके दूर हो जाता है और अपने गुस्से भरी नज़रों से दिशा को देखने लगता है। वहीं दिशा देवांश को अपने सामने देख उसके माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब मैंने आपको हक कर लिया। दिशा की बात सुनकर देवांश खुद को नॉर्मल करता है और दिशा को देख अपनी शांत आवाज़ में कहता है, कोई बात नहीं मिस दिशा, अब आप ठीक तो हैं। देवांश की बात सुनकर दिशा अपना सर हाँ में हिला देती है और तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वहीं देवांश भी दिशा को खड़ा होता देख खुद भी खड़ा हो जाता है और दिशा को देख बोला, मिस दिशा, रात काफ़ी हो गई है, आप चाहें तो आप यहीं रुक सकती हैं। देवांश की बात सुनकर दिशा गुस्से में बोली, नहीं सर, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना बोल वे बिना देवांश की कोई बात सुने वहां से जाने लगती हैं। वहीं देवांश दिशा को जाते हुए देख उसे रोकते हुए बोला, मिस दिशा रुकिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपका इतनी रात को अकेले जाना सही नहीं है। देवांश की बात सुनकर दिशा अपनी जगह रुक बिना देवांश की ओर देखे हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं खुद चली जाऊंगी, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोल वे बिना देवांश की बात सुने वहां से बाहर चली जाती है, जिसे देख देवांश गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, गुड गर्ल, तुम अब कुछ ज़्यादा ही बैड गर्ल बनती जा रही हो, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और तुम मेरे हाथों से निकल जाओ। इतना बोल वे भी बाहर निकल अपनी कार में बैठ जाता है और कार ले दिशा के पीछे जा दिशा के सामने अपनी कार रोक अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस दिशा, अब मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, इसलिए चुपचाप आप कार में बैठ जाइए। देवांश की कड़क आवाज सुन दिशा पहले उस सुनसान रोड को देखती है जहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था, फिर देवांश की कार को, फिर कुछ सोच तुरंत ही बिना कुछ कहे देवांश की कार में बैठ जाती है। वहीं दिशा को बैठते हुए देख देवांश भी चुपचाप अपनी कार को अनाथ आश्रम की ओर मोड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में, रुद्र रूही को अपनी गोद में ले अपनी रूम में पहुंचता है और रूम को पासवर्ड से पहले ही लॉक कर रूही को सीधा ले जाकर आराम से बेड पर बैठा देता है। वहीं रूही रुद्र के छोड़ते ही तुरंत दूसरी साइड से बेड पर से उतरती है और सीधा दरवाजे के पास भागती है और दरवाजे खोलने लगती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो वे समझ जाती है कि जब तक रुद्र नहीं चाहेगा तब तक दरवाजा भी नहीं खुलेगा, क्योंकि जब रूही पहली बार इस रूम में आई थी तब भी रुद्र ने ऐसा ही किया था। जिसे समझ रूही रुद्र की तरफ पलट रुद्र को देख रोते हुए बोली, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे दी के पास जाना है, आप ये दरवाजा खोलो। रूही की बात सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए रूही के पास आता है और उसके करीब आ उसके बालों को कान के पीछे करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में कहता है, रूह तुम चिंता मत करो, तुम अपनी दी से मिल सकती हो, पर अभी नहीं रूह, बाद में, अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम्हें मालूम है रूह, अभी तक मैंने अपनी खूबसूरत की बीवी को सही से देखा भी नहीं है, इसलिए अब कुछ मत बोलना और ना ही मुझे डिस्टर्ब करना, अभी बस मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इतना बोल वे रूही के चेहरे को बारीकी से देखने लगता है तो सच में आज उसकी रूह दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। उसके खूबसूरत हल्की ग्रीन आंखों में भर भर कर काजल और उसके खूबसूरत हार्ट शेप लिप पर पिंक कलर की वाक लिपस्टिक, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वे उसकी रूह के लिप ना होकर सच में चेरी हो जिसे उसे पूरी शिद्दत से खाने का मन कर रहा था। जिसे देख हुए रूही के होठों पर अपनी उंगली रख उसके चेरी जैसे होठों को सहलाते हुए बोला,
रूह क्या मैं इस चेरी को खा लूं?